अष्टोकरपतति श्रीमत् कृष्णरूपमुखिखिलवे चरणारविन्दभक्तिवेदं स्वामी महाराज कृपाल की जय। विष्णुपाद परमहंस प्रभुजिताचार्य अष्टोकरपतति श्रीमत् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कृपाल की जय। अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय। नमाचार्य हरदासाचार्य की जय। प्रेम गुरु जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ताय की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद की गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। नवद्वीप धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगामय की जय। अन्नामय की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। भगवत भक्त कुंद की जय। महानंद हरे कृष्ण अंतराम का कृष्ण मानव संस्करण से आप सबको स्वागत है आपका भगवद्गीता चर्चा में। प्रति शुक्रवार हम लोग श्रीमद् भगवद्गीता की शिक्षा रूपासी मार्गदर्शन के समझने के लिए जीवन में उतारने के लिए अभ्यास कर रहे। इस समय भगवद्गीता से दूसरे अध्याय का वर्णन और श्रवण का कर रहे हैं। आज हम श्लोक संख्या 59 में प्रवेश करेंगे। कितने लोग आज पहली बार आए हैं? हाँ पहले। कितने लोग पिछला जो 58 श्लोक था उसको श्रवण किए हैं? बहुत कम लोग। फिर हम थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देंगे क्या हो रहा है अध्याय में। इस अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को पूछे सवाल किए कि भाई मैं क्या करूं मुझे बताइए। तो भगवान ने शिक्षा देना शुरू की। पहले उन्होंने सर्वोच्च ज्ञान दिया। क्या था सर्वोच्च ज्ञान? मैं आत्मा हूं। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें ही तो ज्ञान दे रहे हैं और हम भी कितने दिन से सुन रहे हैं हम आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ। हम जानते हैं भारतवर्ष में यही मतलब जो कहते हैं ना भारतवर्ष में जो पैदा हुए हैं वो लोग बहुत भाग्यशाली है। क्या भाग्यशाली है? वो पैदा होते ही थोड़े दिन बड़े हुए कि नहीं उनको मालूम रहता है कि मैं आत्मा हूँ मैं शरीर नहीं हूँ। ये काफी साल गुजर जाने के बाद भी लोगों को मालूम नहीं रहता कि भाई क्योंकि एक व्यक्ति मेरे से कुछ सवाल जवाब करने लगा तो मैंने बोला ठीक है मुझे पहला ये बताओ आप हो कौन। तो उन्होंने फिर जैसा हमेशा सब लोग ऐसा ही बताते ना तो फिर हमने उसको जैसा हम लोग शिक्षा मिले रूपा के मार्गदर्शन में उसको हमने उनको भी बताया। तो वो बोलता है कि दिस इज न्यू थिंग फॉर मी नया था ये नया चीज है मेरे लिए। तो मैंने बोला और गहरे में जा सकते इसमें बट अभी इतना ही है। तो बिल्कुल ये कि भाग्यशाली हम लोग इसीलिए भारतवर्ष में पैदा होने से हमें मालूम रहता है कि हम आत्मा है शरीर नहीं है। तो भगवान ने भी यही ज्ञान दिया क्योंकि हम मानते हैं कि हम जानते हैं हम मानते नहीं ये बात अलग है हम जानते हैं कि हम आत्मा है फिर भी हम शरीर मान के ही काम कर रहे हैं। अभी भी हम इतना काम से कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम शरीर मान के ही काम कर रहे हैं। थोड़ा शरीर को कष्ट आ गया सारे भगवद गीता भागवत लेखन हो जाता है। इसीलिए भगवान ने 8 श्लोक में संक्षिप्त में बता दिया कि अगर अपने आप को शरीर मानते हो तो क्या करना चाहिए। तो शरीर का धर्म कैसे पालन करना चाहिए वो बताया 8 श्लोक में। फिर आगे उन्होंने बुद्धि योग के बारे में श्लोक 240 से हम सुनते आ रहे हैं 240 से बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं। बुद्धि योग मतलब क्या है? यही भक्ति योग प्रभुपाद बताए कि यही भक्ति योग क्योंकि बुद्धि से जब हम काम करते हैं सही कार्य हम करते हैं। जो भी कार्य अगर सही ढंग से करना है वो बुद्धि आपको मानना चाहिए हाँ ये सही कर रहे क्योंकि शास्त्र के आधार पे या शास्त्र है क्या। जब भी हम देखो कहीं बोलते हैं ना शास्त्र में लिखा है शास्त्र वो है तो कभी कभी हमारा दिमाग में ताला लगा देते हैं हम शास्त्र तो पुराना हो गया कभी पुराना जमाने का है 5000 साल पहले का भगवद गीता लिखा बोल रहे हैं और उसके पहले वेद है वो क्या आज के जमाने के लिए लागू हो सकता है क्या। हम बोलते हैं कि मॉडर्न साइंस क्या बोलता है मॉडर्न लोग क्या फिलोसोफर क्या बोलता है उसको देखेंगे उसको करेंगे शास्त्र बोले तो हम ताला लगा देते। लेकिन शास्त्र मतलब यही है कि लॉ बुक आज के जमाने में भी बारिश में जब आए लॉ कहता है कि भाई तुम बाएं साइड में नहीं दाएं साइड में गाड़ी चलाओ। हम बोलेंगे हम तो बचपन से देखते आ रहे बाएं साइड में गाड़ी चलते हुए हम चलाना सीखा हुए तो बाएं साइड में सीखे आयोजन कैसे इसका तुरंत बदली कर देंगे। नहीं बदली करेंगे तो यहाँ के लॉ के हिसाब से आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो बिल्कुल शास्त्र मतलब होता है लॉ बुक। तो लॉ बुक किसके लिए है भगवान किसने दुनिया को किसने बनाया जिसने बनाया उसने ही वहाँ का लॉ बुक दिया। तो मतलब भगवान ने जो बनाया उसमें कैसे चलना है कैसे क्या कार्य करना है वो उनका जिस बुक में लिखे उसको बोलते हैं शास्त्र। ठीक है तो 240 में उन्होंने बोला कि जो लॉ बुक में जो लिखा हुआ है उसको अगर आप प्रयास करेंगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं है कोई हानि नहीं है। ठीक है तो कभी कभी लगता है ना कि भाई मैं भगवान कृष्ण भावना उसमें आ जाऊंगा तो मुझे कहीं चीजें छोड़ना पड़ेगा कुछ चीज करना पड़ेगा तो क्या वो उसमें से कुछ हानि तो नहीं हो जाएगा। कभी कभी लोग कहते हैं हमने सुना है काफी परिवार में ऐसा हुआ है कि उन्होंने इस्कॉन में आया दीक्षा विकार लेने के लिए प्रोसेस किया तो दीक्षा लिया उसके बाद उनका इसका ध्यान हो गया या घर में कहीं कुछ हो गया तो बोलते तुम इस्कॉन में घुस ऐसी वैसे ऐसा हुआ। ठीक है तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि प्रभु ये नियम शायद मैं जाके भारत में नहीं कर पाऊंगा तो फिर कहीं हानि तो नहीं हो जाएगा। तो भगवान बिल्कुल बता देते इस श्लोक में 240 में इसमें कोई हानि नहीं है और आपके जीवन में कुछ हार भी होने वाला नहीं है। तो जो भी मैं पिछली बार भी जब कथा कर रहा था तभी भी ये बात बताया था कि हमारा मन में ये सवाल ये होता है कि भारत यहाँ पे है सुविधा है कृष्ण भावना उसमें कार्य कर सकते हैं 4 नियम का पालन कर सकते हैं मंदिर रोज जा सकते हैं भगवद गीता भागवतम का कथा में बैठ सकते हैं लेकिन भारत में जाके ऐसा शायद संभव नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से प्रभु जी हम नहीं कर रहे ये कोई वैलिड कारण नहीं है। क्यों जैसा बारी में आए तो हमको कंपनी ने दिया हुआ घर या अपना जो भी घर लिए उसमें गीजर भी मिलता है एसी भी मिलता है। हम कभी ये सोचा कि भारत में जाए गर्म पानी थोड़ी मिलेगा मेरे को नहाने के लिए तो मुझे एसी थोड़ी मिलेगा मैं यहाँ पे यूज करूंगा और मेरे को आदत लग जाएगी तो फिर भारत में जाके कैसे करूंगा इसलिए मैं एसी और गीजर यूज नहीं करूंगा ऐसा नहीं सोचते कभी। लेकिन जब हम बोलते भगवद गीता आ जाओ इस्कन में आ जाओ मतलब भगवान की सेवा में लग जाओ तो तुरंत ये लग जाता है मेरे को वहाँ जाके करना मुश्किल है इसलिए हम नहीं करेंगे। राजी है सब लोग तो जो भी ऐसा बोल के सोच रहे हैं कि पदक्षेप आगे नहीं ले रहे कि नहीं हमको दीक्षा नहीं लेना है क्योंकि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे आप इसको फिर से दोबारा सोचिए सोच के दीक्षा लेने की प्रक्रिया शुरू कीजिए भगवान की सेवा में आपको कोई हानि नहीं है कोई घाट नहीं है। जितना दिन आप यहाँ पे कर पाएंगे जितना दिन कर पाएंगे वो जो ना आपका पूंजी बन के रह गया अगले जीवन के लिए। तो इसका समय का जो भगवान ने आपको दिया है बारी में ला के रखा है जो सुविधा दिया है उसका सदुपयोग कीजिएगा ये मेरा प्रार्थना है। फिर 42 में भगवान ने बोला अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के अलंकारिक शब्दों पर ही अत्यधिक आसक्त रहते हैं और वो किसके लिए कार्य करते हैं स्वर्ग प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। क्या वो अल्प ज्ञानी कैसा होंगे वो अब भारत से इधर आए आपको आनंद है कि नहीं है कितने लोग बाहरी छोड़ के तुरंत भारत जाना चाहते हैं छुट्टी होते ही मेरा वीजा कैंसिल होते ही मैं भारत जाऊंगा वापस नहीं आऊंगा कितने लोग चाहते हैं ऐसा अरे वो क्यों
अच्छा
आप करके
यहाँ पे बोरिंग लगता है। तो बाकी दो व्यक्ति, इतने लोग बैठे हैं, हमसे जहाँ 40 बैठे होंगे, 30 बैठे होंगे, 30 में से दो व्यक्ति बोले उनको यहाँ पे बोरिंग लाइफ है और भारत भूमि अच्छा है इसलिए वहाँ जाना चाहते, बाकी कोई जाना नहीं चाहता है। क्योंकि कंपैरिजन करेंगे तो भारत से यहाँ पे अल्प कष्ट में हमको ज्यादा सुविधा का उपलब्ध हो जाता है। तो जिनको यहाँ पे वो सुविधा, उनको असुविधा लगता है तो वो लोग जाने के लिए चाहते हैं, लेकिन जिनको लगता है कि नहीं यहाँ पे मुझे सुख सुविधा जो है, भौतिक सुख सुविधा जो है ज्यादा मिलता है भारत से, वो लोग नहीं जाना चाहते है ना। तो स्वर्ग लोक में लोग क्यों जाना चाहते हैं, वहाँ पे सुख सुविधा ज्यादा है। लेकिन जैसा यहाँ पे हम ना आए, बहरीन में आए, कितना दिन रह सकते हैं, 50 साल, 60 साल मैक्सिमम, मान लीजिए आपका नौकरी में से कोई छुटा ही नहीं, 60 साल तक रह सकते हैं। नहीं तो एक दिन आपको जाना ही पड़ेगा भारत में, फिर आप बोलेंगे अरे बहरीन में अच्छा था, मेरा ऐसा चल रहा था, मेरे पास ऐसा गाड़ी था ना, ये सारी चीजें चालू हो जाएगा। तो स्वर्गलोक में जो जाते हैं उनका क्या होता है, पुण्य जैसा क्षय हो जाता है, वो वापस आना पड़ता है सबके लोग। इसकी वजह से भगवान ने उनको क्या बोले, अल्प ज्ञानी, क्योंकि वेदों में वही बताया। और भगवान फिर बोले कि इसलिए वेदों का जो तीन प्रकृति का तीनों गुणों का बनन हुआ है, अर्जुन इससे ऊपर उठो। क्यों उठो, क्योंकि जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, ऐसे वस्तु तो मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो जो हम लोग जो यहाँ पे रुके हैं, हमको भौतिक सुख सुविधाएं करके ज्यादा है करके हम मोहग्रस्त हो जाते हैं, इसकी वजह से हमको रोना पड़ता है बाद में कि अरे बहरीन तो अच्छा है। ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है कि इसके बाद तो फिर भगवान ने वेदों बनाया क्यों, अगर वेदों के वेदों में अगर इस सारी चीजें हैं जो कि अलंकारिक भाषा है, फिर वो हमें मोह में डाल देता है, तो फिर वेदों बनाया क्यों। तो इसके कारण यही है कि कम से कम लोग जो है वेदों में जो बनाया बताया हुआ रास्ता पर करके वो आहिस्ता आहिस्ते भगवत मार्ग पर आ सकते हैं। और इसके लिए भगवान ने 48वां श्लोक में बताया, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय के समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, और इस समभाव को योग कहलाते हैं। ठीक है, आसन प्राणायाम करते जो जाते उसको नहीं योग कहते हैं, वो योग प्रक्रिया का एक अंग है। लेकिन जो समभाव संपन्न होता है, जय और पराजय, दुख और सुख दोनों को जैसे योग कहलाते, भगवान कहते हैं इस तरह से योग करो। और भक्ति सेवा में लगा आदमी इस जीवन में भी अच्छी और बुरी दोनों तरह की प्रतिक्रिया से खुद को बचाता है, इसलिए योग करो। इसके लिए योग करो क्योंकि अच्छी और बुरी दोनों तरह की जो प्रतिक्रिया होता है, क्योंकि हम कोई अच्छा कार्य करते हैं उसका प्रतिक्रिया हमको स्वर्ग लोक जाना पड़ेगा, कोई बुरा कार्य करते हैं तो यही कष्ट भोगना पड़ेगा, तो नरक जाना पड़ेगा, कितना बुरा कार्य करे उसके ऊपर। अभी हमने सुने भगवान ने बोले कि अल्प बुद्धि संपन्न वाले जो है वो स्वर्ग लोक जाते हैं, इसका मतलब हम स्वर्ग जाएंगे फिर आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो ये दोनों प्रतिक्रिया से अगर मुक्ति पाना है तो क्या करना है, समभाव रखे कार्य करना है, तो उसको ही योग कहते हैं। भगवान उसने 50वां श्लोक में बताया। फिर उन्होंने 53वां श्लोक में बताया है कि जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो हमारा बुद्धि स्थिर हो जाता है, समाधि हो जाता है, समाधि में आ जाता है, अचल हो जाता है। ये सारी चीज जब बताए तो अर्जुन ने तुरंत, वो अभी तक सुन रहे थे इतना श्लोक से, अर्जुन ने तुरंत पूछा, चित्त प्रज्ञा सचावाहता समाधि स्वस्थ केशव, सीताजी किम प्रभाव से किमा से प्रजय करके, मतलब क्या है कि जो स्थिर बुद्धि हो गया उसका भाषा क्या है, भाषा का क्या है, रूपाद में शब्दार्थ में लेकर लक्षण क्या है उसका, भाषा क्या मतलब इंग्लिश में बोलता है, उड़िया में बोलता है, तेलुगु में बोलता है, नहीं भाषा कि उसका लक्षण क्या है। तो भगवान ने इस चित्त प्रज्ञा के बात, चित्त प्रज्ञा मन वाले
मुनि कौन है,
उन्होंने 255 से लेकर 257 तक बताया जो हम पिछले सेशन में सुने। फिर पिछला श्लोक जो 8वां श्लोक था उसमें भगवान ने बता रहे कि किम आसीत, तो यहाँ पे उन्होंने पूछा ना कि भाषा क्या है, हाँ वैसी मासी का मतलब कैसा बैठता है, रूपाल ने लिखे कैसा रहता है, बैठता है मतलब कैसा रहता है, रहता है मतलब क्या है रुक जाता है, रहता मतलब नहीं घर में कैसा घर में रहता है कैसा नहीं, वो भी नहीं है, कैसा रुक जाता है, कब रुक जाता मतलब कैसा जो कार्य नहीं करना होता इंद्रिय सुख को कैसा रोकता है उस चीज को, सिर्फ पिछला श्लोक में भगवान ने क्या बताया, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों पे संकुचित करके खोल के भीतर अंदर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रियों विषयों से खींच लेता है वो पूर्ण चेतना में दृढ़ पूर्वक स्थिर हो जाता है। तो
कृषि भगवान कृष्ण भगवान की जगन्नाथ भगवान
तो पिछले श्लोक में भगवान ने यही बताया कि जैसा कछुआ जैसा करता है, कछुआ कैसा करता है देखेंगे कोई कछुआ तो क्या करता है कछुआ, उसके ऊपर थोड़ा सा कहीं दिखाई दिया संकट दिखाई दिया तुरंत वो अपना अंग को अंदर खींच लेता है, एकदम पत्थर जैसा रह जाता है। तो ऐसा जो करता है और पूर्ण चेतना में करता है उसको वो दृढ़ पूर्वक स्थिर हो जाता है, भगवान ने क्या बोला वो दृढ़ पूर्वक स्थिर हो जाता है क्योंकि उसको मालूम रहता है, जैसा हम लोगों को मालूम है चार नियम को पालन करना है, बाजार जाते हैं और वहाँ पे जिलेबी देखा, हम ये नहीं बोलते अरे जिलेबी में तो पैर लहसुन नहीं खा सकते, खाते हैं क्या नहीं खाते है, क्योंकि हम जानते हैं उसको भोग नहीं चढ़ा सकते भगवान को, तो हम यहाँ आके फिर प्रभु को बोलते हैं प्रभु समोसा बनाओ जिलेबी बनाओ भगवान को अर्पण करो हम प्रसाद करेंगे, क्योंकि हमारा अभी इंद्रिय भोग की थोड़ी सी लालसा रह गई है। लेकिन जैसा कछुआ ने किया है ऐसा हम अपने आप को अंदर खींच लेते हैं, हम बाहर कहीं पे भी आत्मो नहीं मारते क्योंकि हम वेजिटेरियन नहीं है, हम क्या है कृष्णटेरियन है, केवल कृष्ण प्रसाद ही हम खाते हैं। और क्यों खाते हैं, क्योंकि भगवान ने जिस चीज को छू लिया जिस चीज को देख लिया वो उसमें चार्ज आ जाता है, और जैसा उसको हम ग्रहण करते हम भी चार्जिंग में रहते हैं हमेशा। इसीलिए कभी कभी प्रश्न आता है प्रभु हम तो ऑफिस में जाते हैं और शास्त्र ने बताया कि भाई जो भक्तों संघ में रहो बाहर लोगों से मिलो मत, तो कैसा फिर हम करते हैं तो व्यवहारिक नहीं है। तो इसके लिए गुरुपाद ने बोले कि साल भर तुम इधर काम करो लोगों से मिलो, लेकिन साल में एक बार मायापुर जाओ वृंदावन जाके चार्ज बन के आओ फिर ताकि एक साल फिर यहाँ से काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये पिछला श्लोक में भगवान बताया, फिर आज का श्लोक में हम प्रवेश करेंगे, क्या बोलते भगवान सुनेंगे मेरे साथ दोहराइएगा। दिशया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तन्ते, दिशया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य
वर्तते मेरे साथ लोग रहे हैं।
देहधारी जी
इंद्रिय भोग से
भले ही
निवृत्त हो जाए
पर
उसमें
इंद्रिय
भोगों
की
इच्छा बनी रहती है,
लेकिन
उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों
को
बंद करने पर
वो
भक्ति में
स्थिर
हो जाता है।
जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषय में खींच लेता है वो पूर्ण चेतना में दृढ़ पूर्वक स्थिर होता है, ये भगवान ने पुरुष लोक में बताया। लेकिन कछुआ जैसा अंगों के संकुचित करके कितना देर तक रह सकता है? ज्यादा देर रह सकता है? उसको भी तो भूख प्यास लगेगा, वो बाहर वो खड़ा रहेगा महावीर डंडा लेके, तो कब तक निकलेगा? नाफिक लेगा, उसको निकलना ही पड़ेगा, है ना। दूसरा चीज ये है कि जब कछुआ अंदर खींच लेता है वो क्या सोचता है? आदमी तो जाएगा, या तो जो विपद है, जो संकट है, कभी न कभी तो जाएगा, फिर मैं निकलूंगा। तो उसका मतलब वो देखता रहता है कि कब जाएगा और फिर मैं निकल के अपना कार्य शुरू करूंगा। तो भगवान ने जब वो बताया कि वहाँ पे कि जो योगी वो ऐसा कर लेता है, मतलब वो उत्तम स्थिति नहीं है। हम भी चार नियम का पालन करते हैं, है ना, चाय कॉफी छोड़ दिए, लेकिन कहीं थोड़ा सा कॉफी का स्मेल आता है तो अभी भी वासना मन में है, फिर हम बोलते प्रभु थोड़ा वो क्या धनिया को बना के करो, मतलब इंद्रिय भोग की लालसा अभी भी है, है ना। चाय का ऐसा है कुछ तो उबाल उबाल के चाय जैसा दिखना चाहिए, दिखा होती है उसको ऐसा। फिर जिसको चॉकलेट में ज्यादा रुचि है वो लोग भी ऐसा ही करते, कुछ क्या है वो, माता जी को कोई नहीं बताने के लिए आज मेरे को, क्या है वो बनाते ना, हाँ क्या पाउडर है, कैरम तो हाँ कैरम पाउडर, कैरम पाउडर बना के चॉकलेट जैसा फ्लेवर ला लेते। इसका मतलब क्या है, हम भी एक कछुए की कैटेगरी में अभी भी है, हमारा मन अभी गया नहीं, अभी वो विषय में अभी भी अटका हुआ है। भले ही बाकी कुछ सारी चीज में कभी कभी कुछ कुछ चीज ऐसा निकल जाते हैं, बिल्कुल जैसा हमने बताया, अभी दुकान में गए समोसा देखे तो बोलते चलो वहाँ पे अच्छा समोसा बना था, हम क्या कर पाएंगे, हम आ जाते दुकान से नहीं गए। लेकिन फिर भी क्या है, लालसा या वासना मन में है। वासना का मतलब क्या है, खुशबू नहीं, वो जो चीज अटका के रखा है हमको वही है वासना। अब देखिए कोई से हम अभी दो बार मैं समोसा के नाम ले चुका हूँ, जिन लोगों ने समोसा अभी अभी खा के आए होंगे उसको जीभ में अभी जो समोसा का टेस्ट लग रहा होगा, जो जिसने नहीं खाया वो सोच रहा है क्लास खत्म होते ही जाते भाई कौन सा सही नहीं, यही है वासना। जो चीज आपने पहले किए हुए है और उस मन में बैठ गया और जब भी उस चीज का नाम हम लेते हैं बिल्कुल वो दिखता है, वो करना ही हुआ। लेकिन कुछ कुछ चीज ऐसा है जो मन से निकल गया तुरंत। जो लोग अभी देखो कुछ कुछ लोग आने से पहले नॉनवेज खाते थे काफी, अभी उस मेल आने से भी अच्छा नहीं लगता है कि नहीं। तो हम भी सोचते थे जब हम इसको में नहीं आते थे, क्या ये लोग बोल रहे गंदा गंदा, कितना अच्छा स्मेल है। कभी कभी तो बंगाली लोग क्या नहीं है सब उधर मतलब उड़ीसा में कहावत है बंगाली लिख लिए कि वो लोग दूसरे के घर में पड़ोसी में अगर मच्छी फ्राई हो रहा है ना, इधर उन लोग राइस खा लेंगे उस मेल से देखे। बाई चांस तो उनके घर में नहीं हो पा रहा, उस मेल से उनके खा लेंगे उस मेल से, इतना मतलब रुचि है नॉनवेज के ऊपर। क्योंकि वहाँ तो मछली नहीं बोलते ना, गंगा फल है वो, फल है वो, फल में जाता है, तो एकादशी में भी खा सकते मतलब। ठीक है, तो अभी देखिए हम देख लिए उसका मतलब कछुआ जैसा ज्यादा देर हम नहीं रह सकते, तो फिर साधकों के लिए क्या करना है, हम उससे उसी सर से ऊपर उठना पड़ेगा ना भगवान के पास जाने के लिए भगवान के कि आज के श्लोक में जो भगवान ने बताया तो कैसे कर सकते क्या कर सकते चरित्र उपाख्या बोलते सुनते प्रभुपाद की जय। जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त ना हो तब तक इंद्रिय रूप से विरक्त होना असंभव है। प्रभुपाद पहला ही लाइन में लिख दिए जब तक अध्यात्म को प्राप्त ना हो तब तक इंद्रिय रूप के विरक्त होना असंभव है। अच्छा इसका कैसे समझे अब देखिए गुरु महाराज आए हुए हैं कितने लोग गुरु महाराज की सेवा में गए आज गए बहुत कम लोग हैं ठीक है। तो जब गुरु महाराज आते हैं आप लोग जब सेवा में रहते हैं तो उस टाइम पे आप गुरु महाराज की सेवा में अभी है ऑलरेडी मतलब रूम में जाना है सेवा करना है वो करना है उस टाइम पे आपको जो सबसे ज्यादा पसंद है वो चीज भक्तों में बांट रहे हैं आप क्या करेंगे गुरु महाराज की सेवा में रहेंगे या आगे आगे जाओगे गुरु महाराज को देंगे गुरु महाराज जाएंगे बोलिए देखा जाएगा किसी को बोल नहीं प्रभु मेरे लिए देख रखना लेकिन उस टाइम पे आप नहीं करें क्योंकि आपका मन किधर है गुरु महाराज का सेवा उच्च स्तर कार्य में जब रहते हैं फिर नीचे का छूट जाता है। तो वही चीज प्रभुपाद यहाँ पे बताया है जब तक अध्यात्म का प्राप्त नहीं होता है तब तक हम ऐसा डिस्ट्रिक्ट में घूमते रहेंगे। तो इसलिए हमको क्या करना है अध्यात्म में कैसा अपना रुचि किसमें बढ़ता है उसी में अपने आप को लगाना है। जो लोग जब राधा सेवा करते हैं उनको बोला आपके यहाँ पे व्यासोसन में बैठो तो बोले प्रभु वो आप सब हम तो राधा सेवा में करते क्या इसका मतलब क्या जो व्यासोसन में बैठते हैं इतने लोग सुनते हैं तो कभी कभी बोलते प्रभु आपका क्लास बहुत अच्छा था हाँ तो और कभी तो इसका मतलब क्या है क्या राधा सेवा से ये व्यक्ति ऊपर है नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि दोनों सेवा भगवान की दृष्टि में समान है। भगवान दो अभी जो कहते हैं बड़ा प्रचलित है अपना भारतवर्ष में कि पति जब सेवा करता है उसका आधा फल पत्नी को मिल जाता है फ्री में। इसका मतलब पत्नी बोला तुम जाके मंदिर जाओ मैं तो टीवी देख रहा हूँ मिल गया उसको 50% आराम से घर में बैठे बैठे है कि नहीं तो इसमें घाटा तो हम लोग को है ना हम इतना मेहनत करके अपना भी टीवी देखती टीवी सीरियल देखने मन कर रहा होगा लेकिन प्रभु ने बोलेगा आज चलो आए हैं क्या नाम तो अतुल कृष्ण प्रभु आए हैं अच्छा क्लास करते आ जाओ
श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री गोविंद भगवान की कृष्ण बलराम की नरसिंह भगवान की जगन्नाथ।
तो हम इतना मेहनत करके आते हैं इतना कुछ करते हैं सुबह मंगल आरती करते हैं और पत्नी जो ना सोती रहती है आराम से उसको देखते ही मन करता है मैं भी थोड़ा सो जाऊं लेकिन भगवान की सेवा में रहता हूँ। तो बाद में पता लगा 50% उसको ऐसा फ्री में मिल गया दूसरा 50% भी बोलने वाला हूँ मैं और 50% बोलते ही मुझे ये ध्यान आ गया दूसरे वाले का क्या है दूसरा वाले 50% मालूम है। अभी देखो किसी ने कहीं पे कुछ गड़बड़ किया हमने देखा उसको हमको बोला कि शास्त्र के हिसाब से ठीक नहीं है हम आके दूसरे प्रभु को बोले प्रभु ये वो प्रभु ना उधर जाके ऐसा गड़बड़ कर रहा था विचार क्या है उस प्रभु से मैं अच्छा हूँ क्योंकि उस प्रभु का अगर ठीक करना है तो हमको इतना देखना है कि उसका शिक्षा गुरु कौन है उनके पास पता नहीं इतना बस प्रभु इन्होंने ऐसा किया था पता नहीं वो कितना मेरा दृष्टि में भी मेरा गड़बड़ रहता है कभी कभी हाँ दृष्टि में हम देखते हैं कुछ चीज जो चीज हमको लगता है गड़बड़ करे लेकिन वो किसी कारण से कर रहे हैं मालूम नहीं इसलिए हम कभी भी किसी का गलती नहीं निकाल सकते। भक्त मतलब किसी का गलती नहीं निकालना गलती निकालना किसका है जो अथॉरिटी है जो गुरु है हाँ वो निकाल सकते उनको वो सुधार सकते वो भी उनका प्रक्रिया कैसे सुधारना है वो प्रक्रिया अलग है ठीक है। तो लेकिन हमारे मन में क्या है उनके बारे में बताना सबको और सबको जो बताते हैं ना वो जो गड़बड़ कार्य किए उनको तो दंड मिलने वाला था ठीक है यहाँ पे अगर दंड नहीं मिल रहा छूट गए कैसा भी ऊपर गए उनको दंड मिलने वाला था उसका 50% नाम को पास आ जाता है। तो बॉम्बे को दोनों साइड जाता है, इधर मंदिर आएंगे पत्नी 50% हमारा अच्छा ले लेगा और हमारा मन में खुजली रहेगा बोलने के दूसरे के बारे में 50% फ्री में आता रहेगा। तो कभी भी किसी के बारे में बोलने से पहले सोच के बताइए। इतना सोच लेना 50% में फ्री में ले रहा हूँ उसका, उसने किया फ्री में 50% हमको मिला। ठीक है, तो पत्नी के बारे में बता रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी में पत्नियां लोग मत रहिए। अब देखो जैसा हमने बताया कि राधा सेवा वाला जो कर रहे कार्य, अब वो उन्होंने इतना मेहनत किया, पुजारी लेके थाली लेके भगवान से कह रहे हो बाबू मैं आपके लिए भोग लेके आया हूँ, तो क्या वो पूरा का पूरा 100% पुजारी को मिला? नहीं, भगवान जहाँ से 50% उनका है तो भगवान ने उनका भी देते हैं। बिल्कुल ऐसा घर में भी जो कार्य होता है, जब पत्नी आपका भगवान का सेवा में फूल के माला गूंज के देती है, भगवान के बर्तन साफ करके देती है, लेकिन वो पूजा पाठ नहीं कर पाती है, तो उसी समय वो जितना कार्य किया भगवान के लिए उतना परसेंट उसको मिलेगा, बाकी जितना हमने किया हमको मिलेगा। हमने अगर मंदिर आने से लेकर सब कार्य हम कर रहे हैं 100% हमारा है। तो हम यही तो बोल रहे थे कि हम कैसा उठेंगे, जिस चीज में रुचि है, जिनको राधा सेवा में रुचि है राधा सेवा में काम कीजिए, जिनको पुजारी में काम करने रुचि है पुजारी में सेवा कीजिए, लेकिन जिसमें रुचि, क्योंकि जिसमें रुचि है, क्योंकि अभी हमने वो परम दुष्ट में नहीं पहुंचे, इसीलिए हमारा इंद्रिय में जिसको सुख मिलता है उसी में कार्य हम करना शुरू करते हैं भगवान का सेवा में। तो करते 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 क्या होता है, भगवान का सेवा में मन लग जाता है, तो फिर जो भी हमारा इंद्रिय में सुख आता है वो हम भगवान का सेवा में ही करते, फिर हम भौतिक सेवा में नहीं जाएंगे। जैसा आज मन करता हमने बोले ना भाई बाहर जाके नहीं खाते, क्योंकि हम जानते भगवान का प्रसाद ही हमको खाना है, तो हम मंदिर आके करते हैं। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, विधि विधान द्वारा इंद्रिय भोग का चयनित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना वो ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। अब जैसे रोगी को डायबिटिक पेशेंट, उसको क्या प्रतिबंध है, मिठाई नहीं खाना, चावल नहीं खाना। तो काफी जब जब शुरू में बोलते हैं डॉक्टर तो फिर हम खाते नहीं है, और बाद में हम बोलते कितना भी मन को मार के रखे थोड़ा सा खा लेते हैं। तो रोज हम थोड़ा थोड़ा खा ही लेते हैं, तो उससे क्यों, रोगी भी नहीं चाहता कि प्रतिबंध लगा रहे, वो जानता है इससे उसको नुकसान है, लेकिन फिर भी वो कार्य में थोड़ा उसका मन रहता है। तो यही है कि प्रतिबंध के द्वारा हम कुछ नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद ये चीज इसको बता रहे हैं यहाँ पे, इसी हाँ, तो मतलब जो रोगी है उसका रुचि समाप्त नहीं होता, क्योंकि वो अभी भी खाना चाहता है, लेकिन उसको मालूम है अभी जिसको टाइफाइड है उसको मालूम है उसको तेल का तला हुआ जो भी खाएगा उसका टाइफाइड खत्म नहीं होगा और बढ़ता जाएगा, लेकिन टाइफाइड होने के बाद उसको वही से पराठा पसंद आता है, समोसा पसंद आता है, वो जो भी तला हुआ चीज उसको पसंद आता है, बाकी चीज खाने का मन नहीं करता है, लेकिन उसको मन को दबा के रखता है, जैसा कछुआ रखता है ऐसा दबा के रखता है, नहीं मैं ठीक होने के बाद खाऊंगा या ठीक होने के बाद खाऊंगी। ठीक है, डायबिटिक का ऐसा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो प्रभुपाद वही बोलते हैं, जो रोगी है उसको प्रतिबंध लगाया जाता है, लेकिन वो टेम्पररी है, जैसा ही ठीक हो जाता है वो फिर वो कार्य शुरू कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो मेरा ऊपर ही प्रतिबंध लगा रहे। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयम के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाता है, जिसमें यम नियम आसन एक प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि सम्मिलित है। तो बिल्कुल ऐसा ही जो लोग ज्ञान मार्ग में हैं या तो योग मार्ग में जाते हैं, इनके लिए भी नियम भगवान तक पहुंचने के लिए, भगवान में उनको मन नहीं लगता है, उनको भगवान मूर्ति ऐसा दिखता है कि मूर्ति है, क्योंकि वो उसमें भगवान नहीं देखते, तो उनको जो सेवा करने के बाद ये क्या सेवा, ये तो ऐसा ही लोग, तो भगवान वो लोग ध्यान करने में जाते हैं। तो उनके लिए नियम रखा गया है क्या क्या, कि भाई जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये सारे रखा गया है, किंतु रूपा देखते हैं, किंतु जिसने कृष्ण बलराम उसको पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसासाधन कर लिया है, उस जड़ व्यक्ति जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावना उसमें रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तु के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। तो प्रभुपाद ने पहले बताया कि जैसे कि हमारे भी नियम बताया गया है, चारों नियम बन है ना, तो हमको ऐसा लगेगा प्रभुपाद तो पहले यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जो नियम से हम क्या नहीं कर सकते, भगवान के प्रति रुचि नहीं बढ़ा सकते, तो फिर हमें क्यों नियम दिया गया है, से उठ के मंगल आरती आना, अरे हम भी थोड़ा सोते थे ना आराम से है ना, फिर चारों नियम ये नहीं खाना वो नहीं करना, ये सारे नियम क्यों हैं? तो ये मन में हमारा जब विचार आता है तो ये जो पहला वाला जो बताया गया है यहाँ पे रूपा ने जो बताया जो अष्टांग योग के लिए जो नियम है उसमें क्या है, ये हम आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप में अपने इंद्रियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं जैसा कछुआ कर रहा है। तो हमें जो नियम दिया गया है चार नियम वो भी ऐसा ही कृत्रिम रूप में है करने के लिए, लेकिन साथ में प्रभुपाद ने क्या दिया, 16 माला जप करना, जो भगवान का नाम उनका रूप और इसमें कोई फर्क नहीं है, यहाँ तक कि उनका प्रसाद में, इसलिए तो महाप्रसाद है गोविंद है, हम कहते हैं खुश हो जाए सबको मुझे प्यार खिल गया देखिए, तो उसमें भी कोई फर्क नहीं है। तब हर समय पे हम भगवान को ग्रहण करते हैं नाम के रूप में प्रसाद के रूप में, मतलब हम भगवान के ग्रहण करते हैं, हम सिर्फ आर्टिफिशियली नहीं रोक रहे, नहीं नहीं हमको समोसा नहीं खाना है, हम नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना, नेति 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 जो कहते हैं ना वैसा नहीं है, यहाँ पे नेति के साथ अस्थि भी है, क्या करना है वो भी कर सकते। तो जब फिर प्रभुपाद यहाँ पे जैसे लिखे कि जब जो प्रतिबंधक है उसमें से तब तक ठीक है जब तक कृष्ण भावना में रुचि जागृत नहीं हो जाती है, तो ऐसा करते करते वो प्रतिबंधन रखती है और साथ में भगवान का नाम में प्रसाद में इसलिए सब हमको प्रभुपाद ने दिए हैं, तो उसमें रुचि हमारा जैसा जैसा होता है। कितने लोग जप रहे माला जप करते भगवान का नाम जप करते हैं, अच्छा बहुत लोग करते, तो दो माला कितने लोग करते हैं, सिर्फ दो माला करते हैं उससे ऊपर नहीं करते, दो के नीचे कितने लोग हैं, कितने दिन से कर रहे हैं, प्रभु 8-9 साल से कर रहे हैं, आपको बना कर दिया जाएगा कि आप मत कीजिए, आपको मैं 1000 दिनार महीना दूंगा, आप बंद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हम तो यहाँ पैसा के लिए आया, तो वो 1000 दिनार मिलेगा कुछ कम बात है क्या, माला जब करना बंद करना क्या मुश्किल, हरे कृष्ण। देखिए क्यों उन्होंने ऐसा बोले, क्योंकि उनका रुचि उन नाम में आ गया है, भला ही हम जब करते समय से हमारा जिस भाव से अब क्या करते हैं उनका अपना हरिदास ठाकुर जी करते थे, हो सकता है उस भाव में हम नहीं कर पाते, काफी काफी समय तो प्रभु बोलते हैं अपना जगत्ता के प्रभु आते हैं ना, वो कहते हैं भागवतम क्लास और जपातिशन ये मन को इतना शांति देता है कि आदमी आराम से सो जाता है। सच में शांति जब नहीं मिलेगा मन में, जब तक शांति नहीं रहेगा आप सोने जा रहे हैं, मन में विचार आपका रहता घूमता रहता है कुछ, तो आप सो नहीं पाएंगे है ना, तो इसका मतलब जब में शांति मिलता है, भला ही जैसा हम बोले कि आहिस्ते आहिस्ते हमारा मन को हम रोक रहे हैं, हमको बताया गया कि भाई जब तक मन इधर उधर भटक गया फिर से जप में जप को सुना करो, जप में मन को ध्यान लगा करो, तो जप में जब लगा देते मतलब क्या, भगवान में ध्यान लगा रहे है ना, क्योंकि भगवान नाम भोग और रूप में कोई फर्क नहीं है। तो ये जब हम ऐसा करते रहेंगे तो इस विधि में रहते हुए भगवान को सेवा में हम रखते हैं, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में रोक दिए और फिर भगवान की सेवा में अपने इंद्रियों को लगा दिए। तो जब ऐसा कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, फिर हमारा रुचि भगवान में आने लगा। तो जब भगवान में रुचि आने लगा ना, बाकी सारे चीज में आहिस्ते आहिस्ते छूट जाएगा। वैराग्य जो कहते हैं, वैराग्य का मतलब क्या है? हाँ जी,
छोड़ना।
और कोई कुछ बोलेगा?
त्याग
देना। देखिए, जो हमारा मन में वैराग्य मतलब है छोड़ना, वैरागी बन जाएगा बोले तो घर वाले ही डर जाते, अरे ये तो वैरागी बन गया मतलब छोड़ छाड़ के चला जाएगा, है ना। लेकिन वैराग्य का मतलब आप सही अर्थ में देखने जाएंगे ना, ये जोड़ना है। कैसे? और जोड़ने में आसानी है, जोड़ने में छोड़ना आसानी है। कैसा? अभी अगर मैं घर में रहता और मेरा फेवरेट टीवी सीरियल आता है, मैं क्या करूँगा? कितना भी मन को इधर उधर भटका के नहीं देखना, टीवी नहीं देखना, टीवी नहीं देखना, तो फिर भी ये आज का एपिसोड देख लेता हूँ, करके लगा के बैठ जाऊंगा। अच्छा, टीवी देखने में बुराई है कि भलाई है? क्या कहते हैं बार बार, कभी कभी बोलते हैं ना कथा में जो बोलता है कि टीवी नहीं देखना चाहिए, सिनेमा नहीं देखना चाहिए, तो लोग बोलते प्रभु क्यों, टीवी में क्या बुराई है? अब सिंपल सी बात मैं बताऊंगा, पूछूंगा आप लोगों को, कृष्ण का रासलीला दिखाया गया टीवी में जो देखे थे, रासलीला गोपियां नाच रहे हैं कृष्ण के साथ डंडा लेके नाच रहे हैं, दिख रहा है आपको सबको? कितने लोग को दिख रहा है, हाथ उठाइए। हाँ, तो जो देखिए, क्योंकि हमने जो चीज देखा है तुरंत हमको दिखने लगता है ना। गोपियों का चीरहरण, लोग पूछते हैं ना, यही सारे पूछते हैं लोग भगवान कृष्ण के बारे में। जो हम कहते हैं भगवान कृष्ण को पूजा करो, भगवान सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा भगवान ही है, कृष्ण ही और कोई नहीं है, तो बोलते प्रभु वो तो ऐसा गलत कार्य कर रहे थे। मैं इसका पर बोलने जाऊंगा तो ये 2 घंटा का प्रवचन हो जाएगा, मैं इसलिए उसके ऊपर नहीं आ रहा हूँ। लेकिन कह रहा हूँ, जब हम टीवी देखते हैं, टीवी में क्या दिखाते हैं कि कृष्ण भगवान 16 साल की है, 18 साल की है, लड़कियां भी उसी उम्र का है, राधारानी भी उसी उम्र के है, और वो रासलीला करते, तो हमारा मन में बिल्कुल पसंद नहीं आता वो, हम खींच लेते, क्योंकि हमको बताया गया कि ये सही चीज नहीं है, पराया स्त्री के साथ नाच पूछना सही चीज नहीं है। तो टीवी के माध्यम से सीरियल में जब हम देखते हैं, हमारा मन में ये वृत्ति जागृत हो जाता है। तो ये सिर्फ टीवी, मतलब जो भी आध्यात्मिक सीरियल वगैरह देखने के बाद मैं बोल रहा हूँ ये हो रहा, तो कि सामाजिक स्थिति में वो लोग कुछ भी उल्टा सीधा जोड़ के दिखाते हैं, उसका क्या हमारे दिमाग में असर नहीं पड़ता? इसी कारण से टीवी सिनेमा देखने से वो जो डायरेक्टर है, वो जो लेखक है, उसका मन में जिस तरह से भावना वो प्रयास करके हमारा मन में घुसाना चाहते हैं, वो घुसा देता है। तो फिर हमारा प्रभुपाद का लिखा हुआ चीज, शास्त्र में लिखा हुआ चीज हमको पसंद नहीं आता, हम फिर चैलेंज करते हैं, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों। अरे हमारा जो शास्त्र है, विज्ञानी लोग लेके हैं, जो ऋषि मुनि थे वो कोई साधारण टीवी डायरेक्टर वाला, जो क्रिप्टोग्राफी जो लेते वैसा वाला नहीं थे वो लोग। इन लोगों ने कितना कुछ रिसर्च करने के बाद, कितना कुछ अनुभव करने के बाद वो लिखे हैं ये सारे चीजें शास्त्र। और आज के डेट में आप उठा के देख लेंगे, आप हम लोग जो साइंस पढ़ते हैं वो साइंस 10 साल के बाद फिर गलत निकल के आता, दूसरा बोलता नहीं 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 आटम सबसे छोटा नहीं है, कम छोटा वाला है। लेकिन शास्त्र में जो लिखा गया है आज तक कई कई गलती साबित नहीं कर पाए, जो गलत बोलते थे आज आके बोलते थे वो सही है। जब निकला मतलब वो क्या नाम है, समुद्र के अंदर द्वारका, द्वारका रामसेतु जब निकला वो लोग आए, अरे वो तो सही निकला आपका, मतलब हमने कहा गलत बोल रहे थे, आप ही लोग गलत बोल रहे हैं, आप ही लोग सही बोल रहे हैं, आप लोग एंजॉय कर रहे हो, हम तो पहले से बोल रहे भगवान है, थे लीला किए हुए हैं, ये सारी चीजें हैं। तो यही है कि भाई जब इन लोगों ने बता दे कुछ नहीं है, फिर ये लोग बोलते हैं हाँ 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 है। तो शास्त्र को हम चैलेंज करने लगते हैं, जब क्यों, क्योंकि हमने वो टीवी वो सिनेमा देखे, उसमें जो उन्होंने बताया उस चीज को हम अपना दिमाग में उतार दिए, हमको लगा यही सही है। कभी कभी न्यूज पेपर में किसने लिखा, क्यों लिखा, कहाँ हुआ, हमको मालूम रहता, न्यूज पेपर में पढ़ते तो विश्वास कर लेते हैं, और शास्त्र में लिखा उसमें तो कुछ ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, अच्छी बात है पूछना, क्योंकि जब तक नहीं पूछेंगे हमारा संदेह दूर नहीं करेंगे वो, हम फिर आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि हमारे मन में ऑलरेडी कचरा भर के रखा, इसलिए पहला तो शास्त्र पढ़ना ही चाहिए, पढ़ने मन में अगर ऐसा कुछ सवाल आता है पूछना चाहिए, लेकिन भाव ये रखना कि हमको शास्त्र समझना है, ये नहीं कि आप लोग गलत, इसको हम गलत कर रहा है, ये भावना रख के हम करेंगे हमारा कभी भी वो दूर नहीं हो पाएगा ज्ञान का, हम हमेशा उसको समझने के लिए कोशिश करना चाहिए। आगे फिर भगवान ने क्या क्या बताया इसके बारे में, कैसा मन को कंट्रोल करना है, क्या मुश्किल है, नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम से, सारे हम आगे देखेंगे। बोले भगवद गीता सत्संग की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।